नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी
और मैं अंजलि जोशी आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में।
तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी और ये बताइए कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी।
क्या नरेंद्र, तुम भी ना कुछ भी पूछ लेते हो
भाई। क्योंकि आज हम हल निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते के बीच पैदा होने वाली कुछ समस्याओं का, वो समस्याएं जो अक्सर उनके अलग अलग रहने की वजह से या फिर पत्नी के नौकरी करने की वजह से पैदा होती हैं।
ये तो सही कहा नरेंद्र। और दोस्तों हर सप्ताह की तरह इस बार भी इस विषय से जुड़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनवाएंगे।
इतना ही नहीं अंजलि, हम आज के एपिसोड में एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से भी बात करने वाले हैं जो शादी के बाद काफी समय तक एक दूसरे से अलग अलग रहा लेकिन उन्होंने इसका असर अपने रिश्ते पर कभी नहीं पड़ने दिया।
दोस्तों अगर आपके मन में कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारियों के प्रति कोई सवाल है या फिर आप प्रवास से जुड़ी कोई नई जानकारी चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमारे नंबर 9197176782223 पर SMS कर सकते हैं।
और आइए दोस्तों अब सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
पिछले एपिसोड में आपने सुना सिनेमा हॉल के बाहर चंदर की उमेश से मुलाकात होती है और वो फिर से उसे मौज मस्ती करने के लिए उकसाता है। चंदर साफ मना कर देता है और उमेश को भी इस रास्ते पर न चलने की हिदायत देता है। उधर गांव में हरेंद्र मीरा को बताता है कि उसे ऋषिकेश में नई नौकरी मिल गई है और उसे 2 दिन बाद ही ऋषिकेश जाना होगा। नीलम दीदी मधु को जूस के पैसे देती है और मधु स्व सहायता समूह की सदस्य बन जाती है। उधर शहर में चंदर और गजेंद्र को सैलरी मिलती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
सुषमा कितनी देर में फोन करने के लिए बोला था?
भौजी बस यही कोई 10 मिनट में।
10 मिनट? अब तो इतनी देर हो गई।
लो भौजी आ गया आपका फोन।
हेलो
हेलो हेलो मधु
जी बोलिए।
हेलो मधु तुम सुन रही हो?
हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है।
हाँ कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
मैं भी ठीक हूँ।
अच्छा सुनिए आपको मेरी चिट्ठी मिल गई थी।
क्या
चिट्ठी?
चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी?
वही जो मैंने उमेश भैजी के हाथ भेजी थी।
नहीं मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली।
नहीं मिली?
अच्छा सुनो
जी
मुझे एक नई नौकरी मिल गई है।
अच्छा?
हाँ और मैं बहुत जल्दी ही पैसे भेज दूंगा।
ठीक है लेकिन आप यहाँ पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने भी यहाँ पर कुछ काम शुरू कर दिया है तो पैसों का इंतजाम हो गया है।
तुमने काम शुरू कर दिया है?
जी।
क्यों मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? और कम से कम काम शुरू करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था।
मैंने सोचा कुछ घर की जिम्मेदारियाँ मुझे भी उठानी चाहिए और फिर इतने दिनों तक आपका कोई फोन भी नहीं आया था।
मैं तो यहाँ बस खाली बैठा हूँ तुम्हें फोन करने के लिए।
नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था।
चलो छोड़ो मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ और तुम्हें ये काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है।
अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो
हे माँ सुरकंडा, अब मेरा बड़ा बेटा भी दूर शहर जा रहा है, इसका ख्याल रखना माँ।
अरे माँ मैं बहुत दूर नहीं ऋषिकेश जा रहा हूँ और हर छुट्टी पर मिलने आता रहूँगा।
वो तो ठीक है बेटा पर देख जरा ध्यान से जाना हाँ, अपना ख्याल रखना।
ठीक है माँ मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा।
और हाँ वहाँ गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, पहाड़ी रास्ते हैं बेटा, और अगर वो लोग पैसे कम दे तो वापस आ जाना और यहीं कोई काम धंधा शुरू करना।
अरे माँ मैंने पूरी बातचीत पहले से ही करके रखी है, पेमेंट की बात भी मैंने पहले ही साफ कर ली है।
चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अरे कम से कम तूने समझदारी से तो काम लिया।
अरे मीरा अब तुम क्यों रो रही हो?
नहीं मैं क्या रो रही हूँ, आप जाइए।
हाँ हाँ बहुत देर हो गई है और अब और देर की तो बस मिलना मुश्किल हो जाएगा, चलो मैं निकलता हूँ।
सुनिए दवाइयाँ लेते रहना, ठीक हो गए हो पर डॉक्टर ने अभी भी कुछ वक्त और दवाई लेते रहने के लिए कहा है।
मैं याद करके दवाई लूंगा और तू अपना और बच्चों का ख्याल रखना।
देखिए रोशन भी कुछ कह रहा है।
मेरा शेर तेरी बहुत याद आएगी मुझे।
बेटा जी आप वापस कब आओगे?
बहुत जल्दी। अच्छा सुनो अपनी माँ को और दादी को परेशान मत करना, उनकी हर बात मानना, मानोगे ना?
बेटा जी मैं घर का पूरा ख्याल रखूँगा।
और नैना और रोशन का ख्याल रखना, ठीक है?
हाँ बेटा जी।
अच्छा माँ चलता हूँ मैं।
ठीक है बेटा और ध्यान से जाना हाँ, और पहुँचते ही फोन कर देना।
ठीक है माँ।
देख ले भाई 400 रुपए में शर्ट और पैंट देनी है तो दे दे।
एक दाम लगेगा 800 रुपए,
लेना है तो लो।
अरे 400 रुपए दूंगा मेरे दोस्त, सोच ले।
अरे इसमें सोचना क्या है साहब, 400 तो मेरी खरीद भी नहीं है। वैसे सुबह सुबह का टाइम है इसलिए चलो ठीक है, 600 रुपए लग जाएगा, लेकिन इससे कम में नहीं होगा बिल्कुल भी।
खज्जू यार 600 कर दिए, ले लेते हैं।
तू चुप कर यार, मैं बात कर रहा हूँ ना
भाई साहब। 400 रुपए में देने हैं तो दे दो
यार, वो 1000 से 600 पर आ गया है, इससे कम नहीं करेगा।
तू चुप कर यार।
नहीं भैया, इससे कम नहीं चलेगा।
ठीक है, हम कहीं और से ले लेते हैं, चल चंदर।
अच्छा भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोनी कर रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ 400 में।
क्यों चंदर, अब आया ना 400 रुपए में? अबे मैं कोई पहली बार थोड़ी खरीद रहा हूँ कपड़े। ये लो भैया 400 रुपए।
ये लो भैया आपके कपड़े।
यार गज्जू तूने तो कमाल ही कर दिया, 1000 रुपए से सीधा 400 रुपए पर।
अबे मैं इन दुकानदारों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ यार।
मतलब तुझे पता था कि वो 400 में दे देगा?
हाँ।
और अगर नहीं देता तो?
तो क्या, अबे कहीं और से खरीद लेते और क्या।
अरे यार गज्जू,
हाँ?
यार वो देख कितनी बढ़िया साड़ी लगी हुई है,
तुझे पहननी है? मेरा मतलब तुझे खरीदनी है।
अब यार मैं सोच रहा हूँ एक खरीद ही लूँ।
मधु के लिए?
हाँ हाँ मधु के लिए।
तो फिर सोच क्या रहा है, चल अंदर चलते हैं।
चल ठीक है।
अरे वाह मधु, इस बार तो तूने कमाल ही कर दिया, पूरी 30 बोतलें।
नीलम दीदी ये सब तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने की वजह से हुआ है, अगर वो मुझे जूस बनाने के लिए नए बर्तन नहीं दिलाती तो मेरे लिए इतनी बोतलें तैयार करना कहाँ मुमकिन था।
ये तो है, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर तूने बहुत अच्छा काम किया।
अच्छा दीदी मैं कह रही थी कि इस बार मुझे सारे पैसे ना देकर आधे पैसे देना और आधे मेरे खाते में जमा करवा देना।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तू रुक, ये ले
जी,
और यहाँ इस रजिस्टर में दस्तखत कर दे।
जी अच्छा।
बाकी के आधे पैसे मैं तेरे खाते में डाल दूंगी।
जी दीदी।
अच्छा सुन, कुछ माल्टा और रखे हुए हैं, उन्हें भी ले जा।
जी दीदी।
कल्पना, कल्पना। अरे आज गुड़िया बेटा ने दरवाजा खोला है।
हाँ वो मम्मी किचन में है ना।
अच्छा वैसे ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
वाह चॉकलेट।
गुड़िया कौन है?
मम्मी चंदर अंकल आए हैं।
और सुनाओ बेटा अब स्कूल जा रही हो ना?
हाँ।
अरे चंदर कैसे हो?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
मैं भी ठीक हूँ।
अरे वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है भाई?
कुछ नहीं पकौड़े बना रही थी।
वाह पकौड़े,
तुम खाओगे? एक काम करती हूँ मैं तुम्हारे लिए लेकर ही आती हूँ।
अरे नहीं नहीं रहने दो, मैं अभी खा पी कर ही आ रहा हूँ।
पक्का तुम्हें पकौड़े नहीं खाने?
अरे नहीं भाई।
ठीक है, और सुनाओ तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है?
अच्छी चल रही है, अभी 2 दिन पहले ही तनख्वाह मिली है।
हाँ चंदर वो तुमसे कुछ पैसे लिए थे मैंने, उनमें से ये 200 रुपए रख लो।
अरे नहीं कल्पना रहने दो, बाद में दे देना।
फिर भी देने तो है ही।
अरे भाई तुम आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था।
मेरे लिए क्या है?
अरे तुम खुद ही खोल कर देख लो।
चंदर ये साड़ी तुमने फिर पैसे खर्च किए।
अब वो क्या है ना, मुझे साड़ी बहुत पसंद आई और लगा कि तुम पर भी अच्छी लगेगी।
लेकिन मैं इस तरह की साड़ियाँ नहीं डालती।
क्यों?
चंदर तुम्हें पता है मैं विधवा हूँ।
तो क्या हुआ, अगर विधवा हो तो अपनी मर्जी से जीना छोड़ दोगी?
फिर भी लोग क्या कहेंगे?
कल्पना ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए।
लेकिन फिर भी।
ठीक है अगर तुम्हें इस साड़ी में इतनी ही बुराई नजर आती है तो लाओ मैं इसे वापस ले जाता हूँ।
लगता है तुम नाराज हो गए।
नहीं।
ठीक है रख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से और तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए। लेकिन आज के बाद तुम ये सब पैसे खर्च करना बंद कर दो, समझे? ये सब ठीक नहीं है चंदर, तुम्हारा भी घर परिवार है।
ठीक है भाई तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अच्छा लाओ अब पकौड़े खिलाओ।
क्या नरेन ये भी कोई बात हुई?
क्या हो गया भाई?
देखो ना मधु ने 4 पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए, चंदर को ये बात अच्छी नहीं लगी।
भाई इसी को तो कहते हैं ईगो प्रॉब्लम। अंजलि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना लोगों से इस बारे में बात की जाए कि क्या उनके मुताबिक घर की महिला का पैसे कमाना, उसका अपने पैसों से घर चलाना पति पत्नी के रिश्तों में समस्याएं खड़ी कर देता है।
मेरी समझ से तो कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आज के इस जमाने में पत्नी का कमाना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि मेरी समझ से तो पत्नी को कमाना ही चाहिए। अगर वो चाहती है कि हमारा घर परिवार या बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई की परवरिश अच्छी हो तो उनको कमाना, पत्नी को भी कमाना ज़रूरी है। और उसको मैं मेरी समझ से पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, इसमें मैं समझती हूँ कि पत्नी को कमाना ही चाहिए।
यदि पति और पत्नी दोनों आपस में मिलकर कमाने लगें तो जहाँ तक मेरा विश्वास है उनके बीच दरार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जैसे एक बैल के बिना दूसरा बैल खेत नहीं जोत सकता है, उसी तरह पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है। और जबकि इसके उदाहरण भी हैं कि अक्सर दरार पड़ जाती हैं, लेकिन ये दरार उनके विचारों में दरार पड़ती है और उन विचारों में दरार पड़ने के बाद उनके विचार बदलते हैं। तो निश्चित बात है कि एक पति कमा रहा है और एक पत्नी कमा रही है तो दोनों पहलू बराबर कमाने लगेंगे तो उनके बीच जो है एक अच्छा से संबंध बनना चाहिए, वो जो है विकास की ओर अग्रसर होंगे और इस प्रकार उनके आपसी सहभागिता से जो है पूरा परिवार विकास करेगा। अगर इस सोच को लेके वो कमाते हैं तो शायद उनके बीच दरार बिल्कुल आनी असंभव है।
नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों में प्रेमदारी रही है कि तो दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास रखेंगे, अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे तो उनके बीच दरार पड़ सकती है। अगर उन दोनों में प्रेमदारी या प्यार विश्वास रहेंगे तो वो दोनों कितनी भी दूर रहेंगे तो उनमें अटूट विश्वास है कि वो कोई एक दूसरे के प्रति उनके बीच कोई दरार नहीं पड़ सकती है।
दोस्तों, अभी आपने सुने लोगों के विचार, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंग मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से जो शादी के बाद काफी समय तक एक दूसरे से अलग रहा, लेकिन उनके बीच इस वजह से कोई समस्या पैदा होती इससे पहले ही उन्होंने अपनी समस्या का हल निकाल लिया।
लेकिन आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से।
आपका परिचय? श्रीमती संगीता रावत, ग्राम भंडार पोस्ट ऑफिस मचकंडी, जिला रुद्रप्रयाग। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपने पति से 6 सालों से दूर रह रही हूँ।
आपको अपने पति से दूर रहकर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
हमें दूर रहकर बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। अकेले घर और बच्चों को संभालना पड़ता है, बहुत काम उठाना पड़ता है, कभी कभी अपनी तबीयत भी खराब होती है, कभी पैसों की समस्या भी आ जाती है। परिवार के सभी सदस्यों जैसे सास ससुर को भी अकेले ही देखभाल करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब होती है जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, उस समय पति के दूर रहने का एहसास ज़्यादा होता है।
इन समस्याओं का सामना करने पर भी क्या आपसी रिश्तों में तनाव आता है?
छोटे मोटे तनाव तो पति पत्नी के आपसी रिश्तों में हमेशा चलते रहते हैं, पर अधिक तनाव की स्थिति न कभी आई है और न कभी आने दी है। हम दोनों ऐसी बातें नहीं सोचते और न ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे आपसी रिश्ते में तनाव आए।
आपने अपने आपसी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया?
हम दोनों एक दूसरे पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं और कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छिपाते, जो बाद में पता चलने पर हम दोनों के बीच तनाव पैदा करें, और छोटे छोटे बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते और बिना सोचे समझे किसी भी बात का निर्णय नहीं लेते। अंत में हम दोनों की सोच एक ही होगी।
अंजलि, मैंने सुना है कि खरीदारी और मोलभाव के मामले में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे होती हैं।
सही सुना है नरेन, मगर ऐसा नहीं है कि पुरुष बार्गेनिंग करना नहीं सीख सकते। अरे भाई, मोलभाव करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
तो क्या तुम्हारे पास भी कुछ टिप्स हैं बार्गेनिंग के लिए?
टिप्स तो है नरेन, लेकिन मैं अपने टिप्स तुम्हें क्यों बताऊं?
ठीक है, तुम अपने टिप्स अपने पास ही रखो, मैं भैजी को बुलाकर पूछ लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे तुमसे भी बेहतर टिप्स दे सकते हैं।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। कहो भाई, आज क्या समस्या है तुम्हारी?
भैजी, नरेन को आपसे मोल भाव करने के कुछ जरूरी टिप्स चाहिए।
आहा, तो ये कौन सी बड़ी बात है? मैं ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से सिर्फ नरेन ही क्यों, कोई भी व्यक्ति बेहतरीन तरीके से मोल भाव कर सकता है और सही दामों में सामान खरीद सकता है।
सच भैजी?
देखो भाई, मोल भाव करते समय सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपको खरीदना क्या है। हो सके तो उस चीज की कीमत के बारे में पहले ही अपने दोस्तों से जानकारी ले लो।
जी भाईजी।
दूसरी बात, खरीदारी करते वक्त आप दुकानदार पर कभी जाहिर ना होने दें कि आपको चीज बड़ी पसंद आ रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुकानदार उस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और दाम भी ज्यादा बोलेगा।
जी भाईजी।
और अगली बात, यानी कि पॉइंट नंबर 3, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वही चीज और कौन कौन सी जगह मिल सकती है, ताकि आपको अगर दाम ज्यादा लग रहे हैं तो आप दुकानदार को कह सकते हैं कि आप उस चीज को कहीं और से भी खरीद सकते हैं।
भैजी, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ।
और सबसे जरूरी बात, आप जिस चीज को खरीदना चाहते हैं दुकानदार को उसकी कम से कम कीमत बोलिए। इस पर दुकानदार भी अपनी बोली हुई कीमत में कुछ कमी जरूर करेगा, आखिर उसको भी तो दुकानदारी करनी है। फिर थोड़ा सा आप अपनी बोली गई कीमत में से ऊपर आइए, थोड़ा दुकानदार नीचे आएगा, ऊपर नीचे, और इस तरीके से उस चीज की एक सही कीमत निर्धारित हो जाएगी। तो नरेन, मेरे इन टिप्स को जानने के बाद अब तो तुम मोल भाव करने में एक्सपर्ट हो गए होगे।
भैजी, अब तो सिर्फ मैं ही क्यों, कोई भी व्यक्ति आसानी से मोल भाव कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको भी भैजी के दिए गए ये टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। अंजलि, तुम्हारा क्या ख्याल है?
किस बारे में?
शॉपिंग करने चलें?
चलेंगे नरेन, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद। अब आपको सुनवाते हैं एक मजेदार गढ़वाली गाना।
ओए होए मेरी मैडम तू चांद सी जुआना, आंगवाल मारी दियो तुए मां बोदो म्यो रुमाना। ओए होए मेरी मैडम तू चांद सी जुआना, आंगवाल मारी दियो तुए मां बोदो म्यो रुमाना। मेरी मैडम तुन गुस्सा नहीं होना, एक दिन तुन मेरी बाणी कराना। गुस्सा मांगी गुरी मुखुड़ी नी सुकोना, मायादार पुतला का भी नी दुखोना। ओए होए मेरी मैडम हिरनी जनी चाल, तेरा गोरा गोरा गाला बेहटड़ी चलाला। ओए होए मेरी मैडम हिरनी जनी चाल, तेरा गोरा गोरा गाला बेहटड़ी चलाला।
और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी काम की बात की तरफ।
काम की बात
दोस्तों, पत्रों के जरिए हमारे काफी सारे प्रवासी श्रोता हमसे ये पूछते हैं कि जब गांव से शहर में आना हो तो उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
हालांकि हम पहले भी इस बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अपने प्रवासी श्रोताओं का ख्याल रखते हुए आज हम एक बार फिर इस बारे में बताने जा रहे हैं।
तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांवों से निकलकर शहर में काम ढूंढने आते हैं, लेकिन प्रवास से जुड़ी जानकारियों के अभाव में और छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से उनका वो सपना सपना ही बनकर रह जाता है। साथ ही उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
अक्सर लोग थोड़ा सा पैसा साथ लेते हैं और शहर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
जैसे सबसे पहले आपको जहाँ जाना है उस जगह की सारी जानकारियाँ इकट्ठा करनी चाहिए। आपको अपने रहने की जगह, बस और ट्रेनों के रूटों की जानकारी होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि आपको शहर में नौकरी की तलाश के लिए किस जगह जाना है और किस किस जगह पर नौकरी की संभावनाएं ज्यादा हैं।
इसके लिए आप टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्रों की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जानकारी अपने गाँव के उन लोगों से भी ले सकते हैं जो पहले से ही शहर में रह रहे हैं।
शहर जाने की योजना बनाते समय शहर में रह रहे अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के पते और फोन नंबर की सही जानकारी इकट्ठा कर लें, ताकि शहर पहुंचने पर आप जरूरत के समय उनसे संपर्क कर सकें।
कोशिश कीजिए कि आप किसी प्रवासी समूह या क्लब की सदस्यता प्राप्त कर लें। जरूरत के समय क्लब और समूह के सदस्य आपके मददगार साथी साबित हो सकते हैं।
शहर में आते समय अपने जरूरी कागजात जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आदि साथ लाना न भूलें। ये आपकी भारत की नागरिकता को तो साबित करते ही हैं, साथ ही साथ आप इन्हें गैस कनेक्शन, फोन कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक में खाता खुलवाते समय अपने स्थायी पते के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हो सके तो अपने दोस्तों और शहर में रह रहे रिश्तेदारों की मदद से नौकरी की बात पहले ही तय कर लें, ताकि शहर जाने के बाद आपको नौकरी ढूंढने का संघर्ष न करना पड़े।
शहर में रहने के लिए जगह तलाशना भी एक मुश्किल काम है। हो सके तो आप अपने रहने का प्रबंध भी पहले से ही करके रखें।
मानसिक तौर पर भी आपको किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जरूरी बातें जिनका आपको शहर में आते समय ध्यान रखना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रवास सुखद और सरल हो जाएगा।
लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है या आप और कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल तुरंत हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए।
SMS के लिए हमारा नंबर है 9197176782।
और दोस्तों, अब बारी है आपकी चिट्ठी की।
जी हाँ, और हम बताने वाले हैं आज के उस लकी विजेता का नाम जिन्होंने जीता है आज का इनाम।
आज हमें रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से शीशपाल परसवाण ने चिट्ठी लिखी है। ये लिखते हैं कि जिस समय मेरे पापा की मृत्यु हुई, उस समय मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था और 12 साल का था। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए घर से दिल्ली भाग गया। उस समय मैं शहर की सारी बातों से अनजान था। कई दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर भूखे पेट भटकता रहा। तब मेरी जान पहचान के एक भाई मुझे मिले। उन्होंने मुझे एक घर पर नौकर रख दिया। वहाँ मेरी पगार 300 रुपए थी। वहाँ मैं बर्तन धोता, कपड़े धोता और घर की सफाई किया करता था। दिन भर काम करते करते खाने का समय नहीं मिलता था, और जब समय मिलता तो पूरा खाना नहीं मिलता। एक दिन मालकिन को चाय देते समय चाय का कप नीचे गिरा और टूट गया। मालकिन ने मुझे बहुत मारा। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोया। फिर मैं वहाँ से भाग गया और अपने भैया के कमरे पर गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि भैया ने वहाँ से कमरा बदल दिया है। तब मेरे भाई के दोस्तों ने मुझे दूध की डेयरी पे नौकरी दिलवा दी, पर मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ फिर भी नहीं छोड़ा। अधिक गर्मी के कारण मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। हर समय मेरी नाक से खून बहता था। इस हालत को देखकर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। फिर मैंने घर वापस जाने का फैसला किया, और गाड़ी में मैंने ये कसम खाई कि मैं दोबारा घर से कभी नहीं भागूंगा। घर आकर 10वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखकर जो दिल्ली न जाने की कसम मैंने खाई थी, वो कसम तोड़ने के लिए मैं मजबूर हो गया और दिल्ली चला गया। 10 से 15 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर भटकने के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई, जिसकी पगार 1 महीने में 1200 रुपए थी। पर उस मालिक ने मुझे 6 महीने की कुल पगार 2200 रुपए दी, और उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया। फिर कई दिनों के बाद मुझे एक सिनेमा घर में नौकरी मिल गई, जहां मेरी पगार 3500 रुपए थी। पर कुछ दिनों बाद उस सिनेमा घर में आग लग गई, और आग लगाने के मामले में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मेरी खूब पिटाई की। मेरे साथ इन सारी घटनाओं का मुख्य कारण था कि मैंने बिना सोचे समझे और बिना किसी से जानकारी हासिल किए प्रवास किया।
सचमुच शीशपाल परसवान जी, आपका अनुभव वाकई काफी कड़वा रहा, लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह है कि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला जो जिंदगी भर आपके काम आएगा। बहरहाल, आपकी चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, शीशपाल जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com। और दोस्तों, अब सुनते हैं आज के संदेश।
जी हाँ, वही संदेश जो आपने भेजे हैं आपके अपनों के लिए।
हेलो, मैं दिल्ली मीठापुर से सायरा बोल रही हूँ। मैं ये संदेश अपनी सहेली सरूफा को देना चाहती हूँ जो मुजफ्फरपुर में रहती है। हेलो सरूफा, तुम कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं और बच्चे कैसे हैं? तुम्हारे सास ससुर मम्मी पापा कैसे हैं? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। हम सभी सहेलियाँ तुम्हें याद करके बहुत रोते हैं। तुम तो हमें याद भी नहीं करती हो। हमारे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है, कोई एड्रेस भी नहीं है ताकि हम तुम्हें कॉन्टेक्ट कर सकें। तुम तो कर सकती थी मगर तुम भी नहीं करती हो। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती है?
मैं दिल्ली मीठापुर से अंजलि बोल रही हूँ। ये संदेश मेरे अनिल मामा के लिए है। हेलो मामा, आप कैसे हो? वहाँ सब कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं बहुत आपको मिस कर रही हूँ और प्लस आप आते भी नहीं हैं। यह मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। आप कब आओगे? फ़ोन करके प्लीज़ बताना।
कुमारी अंजबरतवाल, ग्राम भड़ा पोस्ट में जिला, मैं अपना भेजते हैं यह संदेश दी चाहूँ जो पंजाब आगरा। घर में सब ठीक ठाक से न, घर चिंता नहीं करना। घर पर काम धाम भी कुछ नहीं है और माँ तो वैसे ही है, घर चिंता नहीं करना। फोन करना रे,
मैं दिल्ली क्षेत्र बदरपुर बटी ललिता रावत बनू छू। मैं अपर पौड़ी गढ़वाल ग्राम मैठणम अपर बोडी खन संदेश दीन चाहू छू। हेलो बोडी, नमस्ते, मैं लली बनू छू। मैं और घर ठीक ठाक सब, और बॉडी गर्म क्या होना चाहिए, आजकल काम काज क्या होना चाहिए, और सब ठीक ठाक, भुल्ली भुल्ला बहू भाजी सब ठीक ठाक। और बॉडी ठंड का तो पड़नी चाहिए, तो थोड़ा बहुत कम कम पड़नी चाहिए, दयाल में तो बहुत ठंड लगनो हो।
तो ये थे आज के संदेश, और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप अपना नाम और पता हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो आप उसे भी हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए, या अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां हमें चिट्ठियों के जरिए भेज दीजिए।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भणज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है हमारा, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।